मेरे अत्यंत प्रिय मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 17 जुलाई 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज शुक्रवार है और शुक्रवार को मुझे आप सबको कुछ सूचनाएं देनी होती हैं। सूचनाएं यह हैं फ्रेंड्स कि शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर प्रोवाइड नहीं किया जाता है, लेकिन कल यानी कि शनिवार को आपको प्रेस क्लिपिंग्स एज इट इज मिलेंगी और साथ ही साथ वीकली क्वेश्चन भी आपको दिया जाएगा। मित्रों, वीकली क्वेश्चन को लेकर के मेरे पास लगातार कई मेल आते रहते हैं। दो बातें मैं यहां स्पेशली कहना चाहूंगा। पहला तो यह है कि जब आपकी तैयारी हो जाए अच्छे तरीके से, तब आप वीकली क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में लें, क्योंकि बिना तैयारी के देखिए लिखने का कोई अर्थ नहीं है। दूसरे, आप लोगों के सवाल होते हैं कि सर अब हम उसे समझें कैसे कि हमने सही आंसर लिखा है या नहीं लिखा है। इसके लिए मैं एक दो उपाय सुझा सकता हूं। पहला तो यह है कि अगर आपको कोई गाइड करने वाला व्यक्तिगत स्तर पर मिल सकता हो तो आप उन्हें वो अपना आंसर दिखा सकते हैं। दूसरा यह है कि देखिए खुद भी आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं, क्योंकि कोई चीज अच्छी बनी नहीं बनी इसके मूल्यांकन की क्षमता आप में है। देखिए, आप क्लास अटेंड करते हैं, कोई कैसा लेक्चर देता है, कोई अच्छा देता है, कोई सामान्य देता है, आप मूल्यांकन करते हैं, उसी तरह से आप अपने आंसर का भी मूल्यांकन कर सकते हैं। बस आप अपने उस टैबू को तोड़िए, उस बाधा को हटाइए कि नहीं नहीं मैं मूल्यांकन नहीं कर सकता क्योंकि मेरा तो लेवल वह नहीं है। जब आप उसी टॉपिक को फिर से पढ़ेंगे और फिर से लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि शुरू के आंसर में आपने कौन कौन सी गलतियां की थी, कौन कौन सी कमियां रह गई थी। मित्रों, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आप सबसे संयुक्त राष्ट्र का जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है इसके बारे में थोड़ी सी बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। दूरदर्शन चैनल पर आपने एक शब्द सुना होगा, एयर बबल। एयर बबल कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस प्री एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं, है ना, एयर बबल। इसे एयर बबल तो कहा ही जाता है, दूरदर्शन समाचार ने इसी शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसके और भी कई नाम हैं। ट्रेवल बबल्स भी कहा जाता है, एयर कॉरिडोर भी कहा जाता है, एयर ब्रिजेस भी कहा जाता है। तो देखिए ये है क्या, अगर हम एयर ब्रिजेज शब्द को ले लें तो शायद बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। एयर का मतलब है हवाई, हवा, हवा से हवाई, और यहां जो हम बात कर रहे हैं वो ट्रेवल की बात कर रहे हैं, यानी कि हवाई यातायात की बात कर रहे हैं। तो उसके बीच में ब्रिज, ब्रिज यानी कि दो तटों को जोड़ने वाला, तो यहां हम कहेंगे दो राष्ट्रों को जोड़ने वाला, दो राज्यों को जोड़ने वाला नहीं, दो राष्ट्रों को जोड़ने वाला। आपको मालूम है कि कोरोना के कारण बहुत हवाई यात्राएं जो है बहुत क्या लगभग सारी है, जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं वो रद्द कर दी गई थी, लेकिन अब कितने दिन तक आप रद्द कर सकेंगे, तो कुछ न कुछ शुरुआत करने की बात हो रही है। तो जो एयर बबल है वो कुछ नहीं है, दो राष्ट्र आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, समस्याओं पर विचार करते हैं, फिर वो डिसाइड करते हैं कि ठीक है अभी तक तो पूरी तरह से प्रतिबंध लगे हुए थे, तो लेकिन अब इन प्रतिबंधों को खत्म किया जा सकता है और इन प्रतिबंधों के साथ इस तरीके से यात्रा की अनुमति दी जा सकती है, यातायात की अनुमति दी जा सकती है। फिर जो दो देश आपस में बातचीत करते हैं उन शर्तों के आधार पर हवाई यातायात शुरू कर दी जाती है। कुल मिलाकर के यही है एयर बबल, है ना। भारत ने अभी 2-3 देशों के साथ इसी तरह से हवाई यातायात शुरू करने के बारे में आप यूं कह लीजिए कि बातचीत की है, समझौता किया है या सहमति प्राप्त की है और अपनी सहमति दी भी है। तो ये आपके दिमाग में रजिस्टर्ड होना चाहिए। फ्रेंड्स, कल के दूरदर्शन समाचार पर फिर से एक बहुत अच्छा डिस्कशन था और वो डिस्कशन था कि विश्व के बहुत सारे देश जो चाइनीज ऐप हैं उन पर प्रतिबंध लगाने के बारे में विचार कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन तो पहले कह चुका है कि वो इस पर विचार कर रहा है, अमेरिका भी अब इस पर विचार कर रहा है और यह माना जा रहा है कि दुनिया के और भी बहुत से देश अब इस बात पर बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि उनके यहां जो चाइनीज जो ऐप्स हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। और बकायदे मुझे लगता है कि लगभग सभी देशों के पास इस तरह के कानून हैं कि वो किसी दूसरे देश के ऐप पर प्रतिबंध लगा सकता है, क्यों प्रतिबंध लगा सकता है, उनके अपने अपने आधार होंगे। जैसे भारत के बारे में आप जानते हैं कि अगर हमारी एकता, अखंडता, सार्वभौमिकता को कहीं चुनौती मिलती है तो बकायदे हम उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। दोस्तों, कल के डिस्कशन में भी बहुत अच्छे राजनयिक आए थे और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, मैं केवल उसी बात को आपके सामने रखूंगा, हालांकि बहुत सी बातें कही गई। उन्होंने कहा कि देखिए, अब दुनिया के सामने दो चॉइस हैं, और बहुत अच्छी बात कही, खासकर इसीलिए मैं इसे कोट कर रहा हूं। दुनिया के सामने दो चॉइस हैं, पहला तो यह है कि वो कुछ पैसे बचा लें, और दूसरा यह है कि वो अपनी स्वतंत्रता को बचा लें। ये बात उन्होंने कही। तो पैसे बचा लें और स्वतंत्रता को बचा लें का क्या अर्थ है? पैसे बचाने का मतलब है कि जो चाइनीज ऐप है, आपको मालूम है कि चाइनीज जो सामान भी है, जो पूरी की पूरी दुनिया में जो चाइना का सामान बिक रहा है, वो क्यों बिक रहा है? क्योंकि वो सस्ता है। दूसरे देशों के सामान की तुलना में जो चाइनीज सामान है वो सस्ता है। बल्कि कल के डिस्कशन में यह भी बताया गया कि चाइनीज सामान सस्ता क्यों है। इन्होंने बताया कि जो चाइनीज जो सामान का जो मूल्य निर्धारित किया जाता है वो मार्केट फोर्सेस से निर्धारित नहीं किया जाता कि भाई कितनी लागत आई है और उसमें इतना प्रॉफिट लेकर के उसकी इतनी कीमत रख दी जाए। वहां जो वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण होता है वो सरकार के द्वारा होता है, वो कंट्रोल्ड है। आप यूं कह लीजिए कि सरकार बकायदे उस पर सब्सिडी देती है। जैसे मान लीजिए हमारे यहां भी है कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसमें मान लीजिए 3 रुपए किलो चावल बिक रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि चावल की कीमत 3 रुपए ही है और जो किसान चावल पैदा कर रहा है तो उसकी 2.5-3 रुपए उसकी कॉस्ट आती होगी। नहीं, सरकार सब्सिडी देती है। तो चाइना का पूरा सामान, ज्यादातर सामान यूं कह लीजिए कि इसी आधार पर बिकता है, तो दुनिया में सस्ता बिक रहा है। तो इसी तरह से मामला ऐप का भी है। आप वहां के ऐप को सस्ता समझ करके अपने यहां लागू कर लीजिए, ठीक है। और ये लगभग अब सिद्ध सा हो गया, स्थापित सा हो गया है कि जो चीन है, ये जितने भी उसके ऐप्स हैं, चूंकि सरकारी नीतियों के अनुसार चलते रहते हैं, तो बकायदे जासूसी का भी काम करते हैं। तो जब आप जासूसी करने की उन्हें अनुमति दे रहे हैं इनडायरेक्टली, तो सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं आप अपनी स्वतंत्रता के साथ भी समझौता कर रहे हैं, आगे जाकर के पता नहीं क्या हो जाए। तो उन्होंने ये बहुत अच्छी बात कही। दोस्तों, आपको ध्यान होगा कि पिछले सप्ताह हम लोगों ने एक आदेश के बारे में चर्चा की थी, जो ट्रंप का आदेश था कि उन्होंने यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस से कहा है कि आप अपने कॉलेजेस खोलिए और ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है इसको बंद कीजिए, और विदेश के जो स्टूडेंट इनमें पढ़ रहे हैं या तो वो ऑफलाइन क्लास आकर के अटेंड करें, नहीं तो उनका वीजा रद्द कर दिया जाएगा। इसको फिर बहुत से राज्यों ने चुनौती दी, यहां तक कि यूनिवर्सिटीज ने भी, मैंने आपको बताया था कि हार्वर्ड वगैरह ने चुनौती दी, और अंततः अब यह आदेश वापस ले लिया गया है। यह इस घटना के बारे में अपडेट है और लग रहा था कि यह आदेश टिक नहीं पाएगा। आइए अब हम मुख्य विषय पर आते हैं, वो है संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। दोस्तों, इस विषय को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि न्यूज में आपने सुना होगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, आज इसकी जो उच्च स्तरीय जो सत्र हो रहा है उसको संबोधित करेंगे, और उस संबोधन में जो विषय रखा गया है वो यही है कि कोरोना के बाद अब जो नई स्थितियां इमर्ज हो रही हैं, और खासकर यूएनओ की 75वीं वर्षगांठ है, ये आपको नोट कर लेना चाहिए। यूएनओ की 75वीं वर्षगांठ है, 1945 में ये यूएनओ की स्थापना हुई थी, 75वीं वर्षगांठ है। तो उस पर अब ये जो संस्थाएं हैं यूएनओ की, और खासकर ये जो परिषद है, उसका क्या रोल होना चाहिए, इसको लेकर के विषय निर्धारित किया गया है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी इसको संबोधित करेंगे। अगर आपके पास समय हो तो मुझे लगता है कि इसे आपको सुनना चाहिए। मैं बार बार आप लोगों को याद दिलाता रहता हूं कि ऐसा करना चाहिए। अब जो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ये क्या है, आइए थोड़ा सा परिचय प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, जो यूएनओ है उसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, यानी कि आप यूं कह लीजिए कि सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं 6 यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये 6 सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ कौन से हैं? उनमें से ही एक है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है ECOSOC, राइट? 6 स्तंभ आपको मैं बता रहा हूं। नंबर 1, जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र की जो आम सभा है ना, सभी राष्ट्र उसके सदस्य होते हैं, आम सभा के बारे में आप जानते हैं। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसे आप सुरक्षा परिषद कहते हैं, जिसमें 5 सदस्य स्थायी होते हैं, आपको मालूम है, जिनको वीटो पावर होता है। इसके बाद कुछ अस्थायी सदस्य होते हैं, जिसमें भी भारत का भी चयन हुआ है, निर्वाचन हुआ है कहना चाहिए। इसके बाद जो तीसरा स्तंभ है वो वही है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसके बाद जो चौथा है वो है द ट्रस्टशिप काउंसिल। पांचवा है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और छठवां है यूएनओ का सचिवालय सेक्रेटेरिएट। तो ये छह सबसे इंपॉर्टेंट हैं। इसमें जो द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, बेसिकली ये आप यूं कह लीजिए कि यूएनओ के देख रेख में, सामान्यतः आपको बता रहा हूं कि आर्थिक और सामाजिक विकास संबंधी जो गतिविधियां पूरी दुनिया में होती हैं, उन गतिविधियों को संचालित करने वाली जो एजेंसीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो यूएनओ से जुड़ी हुई एजेंसी हैं, उन सबको देखती है, सुपरवाइज करती है, आप मोटे तौर पर ये कह सकते हैं। तो कई इस तरह के ऑर्गन्स जो हैं, ऑर्गेनाइजेशंस इससे जुड़े हुए हैं दोस्तों। इस परिषद में 54 मेंबर्स होते हैं, आपको ध्यान रहना चाहिए कि 54 मेंबर्स होते हैं जो अलग अलग चुने जाते हैं, और एरिया वाइज उनके लिए निर्धारण है कि लैटिन अमेरिकी देशों से इतने मेंबर होंगे, अफ्रीका वाले से इतने मेंबर होंगे, उनके अलग अलग तरह के नाम है, उसमें आप मत जाएं। तो 54 मेंबर्स होते हैं, ये बदलते रहते हैं, राइट। हर साल जुलाई में इसकी उच्च स्तरीय बैठक होती है, जुलाई में, और अभी जुलाई है और हमारे प्रधानमंत्री जी उसे संबोधित करेंगे और उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करेंगे, तो आप इसे जोड़कर देख सकते हैं। और अभी जो ये जो बैठक होती है, इस बैठक में आपने एक शब्द सुना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास, और इसको लेकर के एजेंडा 2030 तैयार किया गया है कि 2030 तक हमें किन लक्ष्यों को हासिल करना है, और इस पर आपकी बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए प्री और मेन दोनों की दृष्टि से। इसको रिव्यू किया जाता है कि इसका कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, क्या क्या इसमें बाधाएं आ रही हैं, तो ये जो एजेंसी है, जो इकोसॉक का आप कह लीजिए, वो इसे रिव्यू करती है। और यहां आपको मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि ये जो परिषद है, ये इस परिषद में देश तो है ही है, 54 इसके सदस्य होते ही हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ बहुत से एनजीओज, लगभग 1600 एनजीओज को इसमें बकायदे सलाहकार की हैसियत दी गई है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की, वो सलाहकार के रूप में इस एजेंसी से जुड़े हुए, इस परिषद से जुड़े हुए हैं। और इस परिषद का फिर काम है कि यूएनओ को रिकमेंड करे कि भाई इस दुनिया के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए किस तरह की नीतियां बनाई जानी चाहिए, तो ये परिषद इस तरह के रिकमेंडेशन यूएनओ को देती है। तो ये बहुत ही संक्षिप्त सी जानकारी मैंने आपको इस परिषद के बारे में यहां दी है दोस्तों। मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, इनमें से कुछ दोस्तों के नाम हैं, अंकित राज मुंबई से, श्रुति ओझा सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से, और शिवांग तिवारी, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही अब दो दिनों के लिए विदाई मांगते हुए आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूँगा, और साथ ही अपनी बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।